प्रियल निखिल को एकटक देख रही थी। उसने उसके हाथ को अपने हाथ में ले रखा था और बस रो रही थी। निखिल को होश आ चुका था, उसके बावजूद उसने आंखें बंद रखी थीं। प्रियल ने रोते हुए कहा, आई प्रॉमिस, अब से मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, कभी जिद नहीं करूंगी। नील और निखिल को भी सब बता दूंगी, लेकिन प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाओ। निखिल ने अपने मन में सोचते हुए कहा, झूठी, मैं तुझे अच्छे से जानता हूं गुड़िया। मेरी आंख खुलते ही सबसे पहले तुम मुझसे झगड़ा करोगी। बच्चों को बताना तो दूर, तुम तो मुझे दिन में बार बार ये धमकी दोगी कि मैं उन्हें कुछ नहीं बताने वाली। और तो और, मैं तुम्हारी करीब क्यों आया, इसकी भी तुझे पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। प्रियल ने कहा, पक्का, मैं आपसे कोई बहस नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन आपको मुझसे बिना पूछे मेरे करीब भी नहीं आना चाहिए था। इतने दिनों तक जब मैं आपके पास आना चाहती थी, तब तो मुझसे दूर दूर भागते थे, और अब अगर पास आए भी तो मैं आपके बिना नहीं रह सकती। प्लीज जल्दी से उठ जाइए ना निखिल। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम मुझसे एक्सप्लेनेशन जरूर मांगोगी। हद होती है यार, एक तो जान बचाओ, ऊपर से अच्छा गुड़िया, मुझे होश आया तो तुम सच में नील और नीयू को सब कुछ बता दोगी, निखिल मन में कहा। अचानक से प्रियल का ध्यान निखिल की तरफ गया तो उसने देखा कि वो चुपके से उसे देख रहा था। प्रियल के देखते ही निखिल ने फिर से आंखें बंद कर ली। प्रियल ने सोचा, अच्छा तो आपको होश आ चुका है निखिल, उसके बावजूद भी आप मेरे मजे ले रहे थे। यहां मेरी रो रोकर हालत खराब हो गई है, और ये है कि आराम से सो रहे हैं, इन्हें तो मैं अभी बताती हूं। प्रियल ने जोर से बोला, उस पागल को कब होश आएगा इन्हें, मैं तो थक गई यहां बैठे बैठे, अब तो मेरे आंसू भी सूख गए। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, अर्जुन अर्जुन, ग्लिसरीन मिलेगा क्या, या कोई आई ड्रॉप भी चलेगी। वो ये अब तक झूठा रो रही थी, मतलब गुड़िया, निखिल ने सोचा। प्रियल मुस्कुराते हुए वहां से उठकर जाने लगी कि निखिल ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। निखिल ने कहा, रुको गुड़िया, तुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ मुझे इस हालत में देखकर? तुम झूठा रो रही थी और तुम थक गई मेरे पास बैठकर? अच्छा, तो आपको होश आने के बावजूद आप यहां पर बेहोश होने का ड्रामा करके मेरे मजे ले रहे थे, उसका क्या? आपको दिख नहीं रहा मैं इतनी परेशान हूं, और आप हैं कि यहां आराम से लेटकर मुझे देख रहे थे। निखिल ने कहा, ओ तो तुझे पता चल गया, मैं तुझे रोते हुए देख रहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। प्रियल ने अपना हाथ निखिल के हाथ से अलग किया और उसके पास बैठकर कहा, आप ठीक तो हो ना, आपको नहीं पता मैं कितनी घबरा गई थी आपको इस हालत में देखकर। आई प्रॉमिस, आगे से मैं कभी जिद नहीं करूंगी। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बच्चे कहाँ हैं गुड़िया, कल रात को दोनों बहुत घबरा गए थे। वो दोनों आरूही के पास थे, उसने उन्हें स्कूल भेज दिया होगा, अंकल सर उन्हें लाने के लिए गए थे, लेकिन लगता नहीं कि उनका स्कूल ऑफ हुआ होगा। निखिल ने कहा, अच्छा गुड़िया, मैंने अभी सुना कि तुमने कहा था कि तुम बच्चों को सब कुछ बता दोगी, तो कब बता रही हो? हाँ तो वो जब आप बेहोश थे तब बता देती, अभी आपको होश आ गया तो मैं उन्हें बताऊं। आप एक काम कीजिए ना, फिर से बेहोश हो जाइए, तब शायद मैं उन्हें बता दूं। प्रियल जानबूझकर निखिल को परेशान कर रही थी। निखिल ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ मुझे अच्छे से पता था कि तुम कभी नहीं बताओगी। निखिल और प्रियल आपस में नोकझोंक कर रहे थे कि तभी अंकल नील और नीयू को लेकर आया। वो दोनों निखिल को ठीक देखकर बहुत खुश हो गए। नील ने निखिल के पास आकर कहा, पापा आप ठीक हो ना? नीयू ने कहा, जब सुबह आप कुछ बोल नहीं रहे थे तो हम बहुत डर गए थे, अच्छा हुआ कि ये अंकल हमें यहाँ ले आए, हमने आपको बहुत मिस किया पापा। नील और नीयू निखिल से बात कर रहे थे, जबकि उन दोनों के मुंह से पापा सुनकर निखिल, प्रियल और अंकल तीनों ही हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। निखिल ने कहा, गुड़िया तुमने इन दोनों को कब बताया कि मैं इनका? प्रियल ने बीच में ही कहा, लेकिन मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। बच्चे तुम दोनों क्या बोल रहे हो, तुम दोनों को कैसे पता कि ये कौन है? नील ने कहा, हाँ गुड़िया हमें पता है कि ये हमारे पापा हैं। प्रियल ने गुस्से में कहा, जब तुम दोनों इन्हें पापा बोल सकते हो तो मुझे मम्मा बोलने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे ही क्यों गुड़िया गुड़िया बुलाते रहते हो? निखिल ने कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम गुड़िया ही रहोगी, चाहे फिर कितने भी बच्चों की मम्मा क्यों ना बन जाओ। अच्छा न्यू बेटा, मुझे बताओ कि आपको दोनों को किसने बताया कि मैं तुम दोनों का डैड हूँ? न्यू ने कहा, वो उस दिन हमारे घर पर जो आपके दो डैड आए थे और साथ में वो आंटी थी ना जिन्होंने एक छोटी बेबी ले रखी थी, उन्होंने हमें कुछ पिक्चर्स और वीडियो दिखाए थे जिनमें आप दोनों की शादी हो रही थी, तब आप दोनों ऊपर झगड़ा कर रहे होंगे। अंकल ने हंसते हुए कहा, वाह निखिल तेरे बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं, इन्हें भी पता है कि तुम दोनों अकेले में सिर्फ झगड़ा ही करते होंगे। प्रियल ने कहा, ओ तो ये सब जीनी और डैड लोगों ने मिलकर किया है। नील ने बताया, फिर उनके जाने के बाद हमने अर्जुन अंकल और चाशनी से बात की थी,
तब उन्होंने हमें बताया कि आप हमारे पापा हो। निखिल ने हैरान होकर कहा, जब तुम दोनों सारी बात सच जानते थे तो मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रहे थे और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अर्जुन ने अंदर की तरफ आते हुए कहा, क्योंकि हमने ही इन दोनों को मना किया था। अब तुम दोनों बच्चे की तरह झगड़ा करोगे तो तुम्हारे बच्चों को तो मॉरल होना पड़ेगा ना। हमें लगा कि इन 5 सालों में तुम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, शायद बच्चों के चलते वो दूर हो जाए। ये दोनों बच्चे तुम बड़े बच्चों को समझा पाए। न्यू ने कहा, लेकिन ये नहीं समझेंगे। निखिल ने दोनों बच्चों को गले लगाकर कहा, हम समझ गए हैं बेटा। अर्जुन, इसका बदला तो मैं तुमसे ले रहा हूंगा। तुझे मुझे मेरे बच्चों से दूर नहीं रखना चाहिए था। अर्जुन ने प्रियल से कहा, मैंने कहा था ना, ये होश में आते ही फिर से शुरू हो जाएगा। देखो कैसे चिल्ला रहा है। प्रियल ने मुंह बनाकर कहा, हाँ सही कहा, तेरे पास कोई दवाई नहीं है क्या जिससे इनको फिर से बेहोश कर सके? तुम दोनों को तो घर पर जाने के बाद बताऊंगा। प्रियल, बहुत ब्लैकमेल किया है ना तुमने मुझे बच्चों को लेकर, अब एक एक बात का बदला लूंगा, निखिल ने खुश होकर कहा। प्रियल ने कहा, डॉक्टर ने आपको ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कहा था, अभी सिर्फ 6 घंटे ही हुए हैं, अभी तो 2-4 दिन और यहीं रुकना है। ओ रियली गुड़िया, मत भूलो कि मैं भी एक डॉक्टर ही हूँ। नील और न्यू ने धीरे से बोला, ये दोनों फिर से झगड़ा करने लग गए, पता नहीं इनका क्या होगा। अंकल ने कहा, अर्जुन निखिल के डिस्चार्ज पेपर्स बनवा दो। अर्जुन बोला, सही कहा, जल्दी से ले जाओ इसे यहाँ से, इसे तो मैं बिना डिस्चार्ज पेपर्स के ही घर तक छोड़कर आऊंगा। निखिल को डिस्चार्ज मिलते मिलते शाम हो चुकी थी। दोनों बच्चों के साथ निखिल और प्रियल घर पर आ चुके थे। उन दोनों को साथ में देखकर मारिया आंटी पहले भी बहुत गुस्सा हो चुकी थी, अब तो वो उनके घर लौटने का इंतजार कर रही थी ताकि उन्हें घर से निकाल सके। निखिल और प्रियल बच्चों के साथ घर पहुंचे तो मारिया आंटी गाड़ी में उन्हीं का इंतजार करते हुए इधर उधर चक्कर लगा रही थी। मारिया ने कहा, ओ तो आ गए तुम दोनों, मतलब तुम आए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं और तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ चक्कर भी चला लिया। उसने प्रियल की ओर देखकर कहा, तुम्हारे तो ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनका तो कुछ सोचती, और तुम्हारा पति, अब तो मुझे उस पर दया आ रही है। निखिल ने धीरे से कहा, हाँ कभी कभार दया तो मुझे भी खुद पर बहुत आती है।
प्रियल ने कहा, आंटी आप क्या बोल रही हैं, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए, कम से कम बच्चों के सामने तो ऐसी बात मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। चलो नील और न्यू, बच्चे तुम दोनों अंदर जाओ, बड़े लोग बात करते हैं तो बच्चों को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए ना। ये दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, तुम चारों अभी के अभी निकलो मेरे घर से, कहीं और जाकर अपना ठिकाना ढूंढ लो। और रही बात तुम दोनों के एडवांस किराया देने की, तो तुम दोनों ने जो फॉर्म साइन किया था उसके अंदर साफ लिखा था कि आप अपने पार्टनर को मेरे घर में नहीं ला सकते, तुम दोनों ने वो रूल तोड़ा है, इसलिए चले जाओ, कोई किराया नहीं मिलेगा, मारिया ने चिल्लाकर कहा। निखिल ने कहा, आंटी मैं बहुत बीमार हूँ, आप ऐसी हालत में मुझे घर से निकालोगी? प्रियल ने धीरे से कहा, आप ये ड्रामा मत कीजिए, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उसने मारिया से कहा, देखिए आंटी हम कल चले जाएंगे, आज रात के लिए तो हमें रुकने दो। निखिल ने पूछा, अच्छा आप बताओ कि आप ये घर हमें कितने में बेच सकती हैं, हम ये घर ही खरीद लेंगे। मारिया ने कहा, ऐसे लोगों को अपना घर बिल्कुल नहीं दूंगी जो सिंगल से मिंगल होने में 2 दिन भी नहीं लगाते। अब आपको क्या पता प्रियल को कितने दिन लगे थे मुझे पटाने में, निखिल ने मुस्कुराकर बोला। प्रियल ने कहा, निखिल बच्चे हैं पास में, ठीक है आंटी हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमें हमारा सामान तो लेने दीजिए, उसे पैक करने में कम से कम 2 दिन का टाइम तो लगेगा ही ना। प्रियल की बाप का मारिया के पास कोई जवाब नहीं था और वो वहां से मुंह बनाते हुए ऊपर की तरफ चली गई। मारिया ने बालकनी में खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, 2 दिन के बाद मुझे तुम दोनों यहाँ पर दिखने नहीं चाहिए। नील ने कहा, ये आंटी कितना ड्रामा करती है ना। न्यू ने निखिल से पूछा, पापा अब हम कहाँ जाएंगे? निखिल ने कहा, डोंट वरी बेटा, मैं अंकल से बात कर लेता हूँ, वो कहीं ना कहीं अरेंज कर देगा, बात की बात में देख लेंगे, अभी तो अंदर चलते हैं। निखिल आपकी वजह से हमेशा चीज बिगड़ जाती है, प्रियल अंदर जाते हुए बोली। निखिल ने कहा, हाँ बोल भी कौन रहा है जो खुद जाकर किडनैप हो जाता है। नील ने पूछा, आप दोनों इतना झगड़ा क्यों करते हो? निखिल ने कहा, ये झगड़ा नहीं हमारा प्यार है, तुम्हें भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। निखिल और प्रियल बच्चों के साथ अंदर जा चुके थे, जैसा कि मारिया आंटी ने कहा था कि उन्हें 2 दिन में घर खाली करना था, निखिल भी वहां पर नहीं रुकना चाहता था, इसलिए प्रियल ने उन लोगों का सारा सामान पैक कर लिया था और अंकल ने उनके रुकने का इंतजाम अपने ही दूसरे घर में कर दिया था। निखिल और प्रियल को अंकल के दूसरे घर में सेटल हुए लगभग 1 महीना हो चुका था, चीजें काफी हद तक सेटल हो चुकी थी, निखिल और प्रियल की लाइफ भी पहले जैसी हो गई थी, जहां वो दोनों अपने सारे गिले शिकवे मिटाकर फिर से एक हो गए थे। इस 1 महीने में नील और न्यू भी निखिल के बहुत करीब आ चुके थे। शाम के समय में निखिल दोनों बच्चों को पढ़ा रहा था कि तभी मिस्टर मुखर्जी वहां पर आए। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, बहुत प्यारे बच्चे हैं, तो ये वजह है आपकी वापस न आने की? निखिल ने धीरे से कहा, कहीं और बैठकर बात करो, बच्चों के सामने कुछ नहीं प्लीज। फिर उसने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, प्रियल प्रियल प्लीज बाहर आना। प्रियल ने वहां आकर कहा, हाँ क्या हुआ? फिर उसकी नजर मिस्टर मुखर्जी पर पड़ी। ओ तो मिस्टर मुखर्जी यहाँ आए हैं, ओके मैं समझ गई हूँ। नील न्यू बच्चे जाओ, तुम दोनों अंदर जाकर थोड़ी देर टीवी देख लो और बाहर मत आना।
प्रियल के कहते ही दोनों बच्चे अंदर चले गए, जबकि मिस्टर मुखर्जी निखिल और प्रियल के साथ वहां बैठकर बात कर रहे थे। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि आपने जन्नत को वहां से क्यों निकाला और आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों थी और पहले ही दिन आप जन्नत को देखकर इतना इमोशनल क्यों हो गए थे। निखिल ने कहा, जब आपको सब पता चल ही गया है तो आप क्या छुपाना। मैंने आपसे कहा था मिस्टर मुखर्जी कि मैं आपको यूएसए की सबसे बेस्ट लीडिंग टीम लाकर दूंगा। मैंने इसके लिए एप्लीकेशन डाल दी है, वहां से रिस्पॉन्स आने वाला ही होगा। मिस्टर मुखर्जी, मुझे बेस्ट टीम नहीं, मुझे आप चाहिए सर। इनफैक्ट आप दोनों। आई प्रॉमिस, बच्चों की सिक्योरिटी पर मैं आज भी नहीं आने दूंगा। आपके बच्चों को बिल्कुल सुरक्षित रखा जाएगा। निखिल ने हंसते हुए कहा, मैंने आपकी सिक्योरिटी और सुरक्षा अच्छे से देख ली है मिस्टर मुखर्जी। अक्सर हमारी ही रेस्क्यू की गई लड़कियां वापस रेड लाइट एरिया में मिलती हैं। मुझे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है। बस एक बार टीम यहां पर आ जाए, मैं उन सब कुछ समझाकर वापस यूएसए चला जाऊंगा। प्रियल स्थिति को अच्छे से समझ रही थी। वो भी चाहती थी कि निखिल इस मिशन में इन्वॉल्व हो। प्रियल ने कहा, निखिल एक बार हमें फिर से सोचना चाहिए, प्लीज, हमारे लिए नहीं तो उन लड़कियों के लिए जो वहां पर फंसी हुई हैं। मैं अपनी तरफ से जो बन पड़ेगा वो सब करूंगा, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि ना तो तुम और ना ही मैं इस मिशन में इन्वॉल्व होंगे, निखिल ने गुस्से में कहा। बाकी अगर तुम्हें तुम्हारी जिद करनी ही है तो अच्छी बात है, जाओ मिशन पर और जो करना है करो। मैं दोनों बच्चों को लेकर आज ही यूएसए वापस चला जाऊंगा। प्रियल निखिल की बात सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी, जबकि मिस्टर मुखर्जी भी अब कुछ नहीं कर पा रहे थे। निखिल अपना डिसीजन बताकर अंदर चला गया, जबकि मिस्टर मुखर्जी को भी वहां एक बार रुकना सही नहीं लगा तो वो भी वहां से जा चुके थे। निखिल के मुंह से बच्चों को ले जाने की बात सुनकर प्रियल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।